विद्वान आदि साधन पाल विद्वान आचार्य गुरु विद्या साधन गुरु महाराज कल के बाद तो कर सकते अभी भी हैं क्या किस तरह प्रश्न पूछा है? यह द्रव्य है गुण है या पर्याय? पर्याय है तो कौन से गुण है? संस्कार। संस्कार के बारे में ये कह रहे हैं कि संस्कार को हम द्रव्य माने या गुण माने या कि पर्याय माने। अगर हम उसको पर्याय मानते हैं तो वो कौन से गुण की पर्याय? क्योंकि पर्याय तो एक एक समय की होती है, द्रव्य ध्रुव है, फिर भी अनादि संस्कार की क्या स्थिति? देखो भाई, कोई भी पर्याय होती है तो वो द्रव्य या गुण में से ही प्रकट होती है। संस्कार को हम पर्याय मानेंगे। जैसे जैसे हम कर्म बांधते हैं वैसा हमारे आत्मा पर संस्कार पड़ता है। वो जो संस्कार है वो पुद्गल की पर्याय है, लेकिन वो चेतना के साथ संबद्ध होकर के सुख दुख जीवित मरणोपग्रहास्य, सुख दुख जीवन मरण में निमित्त बनना, ये पुद्गल का जीव पर भी उपकार है और जीव का भी जीव पर उपकार है, ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है। तो इससे ये निश्चित हुआ कि पुद्गल तो है द्रव्य और उसकी पर्याय है संस्कार। हम अपनी भाषा में, कर्म की भाषा में कहेंगे कर्म और सामान्य भाषा में उसी को कहेंगे संस्कार। हमको जितना भी ज्ञान प्राप्त है वो हमारे ज्ञान के संस्कार से प्राप्त है। शास्त्रीय भाषा में कहेंगे ज्ञान के सयोक्तम से प्राप्त है, क्योंकि जितना जितना कर्म का आवरण हटा है उतना ही सयोक्तम हुआ है हमारे लिए ज्ञान का, उतना ही संस्कार, जितना सयोक्तम होगा उतना ज्ञान का संस्कार। इस तरह सब प्रकार से विचार करने पर यह ज्ञात हो जाता है कि यह संस्कार और कुछ नहीं है, एक पर्याय है। वो पर्याय कौन से गुण की है? तो जैसे जिसके संस्कार, ज्ञान का संस्कार है तो वह पर्याय सदरूप होगी। हाँ, और विशेष रूप से देखा जाए तो अगर हम चेतना की पर्याय माने तब तो फिर वो हमेशा रहनी चाहिए, फिर तो वो सिद्ध अवस्था में भी होनी चाहिए। इसलिए चेतना की पर्याय तो नहीं है, लेकिन पुद्गल उसका उपादान कारण है, निमित्त से होती है वो चेतना से। संस्कार चेतना में होते हैं, चेतना के निमित्त से होते हैं, पर उनका उपादान कारण कौन है? जैसे हमारे भीतर राग द्वेष होते हैं तो राग द्वेष का उपादान कारण क्या है? वास्तव में तो ये राग द्वेष जो विकारी भाव हैं, जो विकारी संस्कार हैं, वे पुद्गल उनका उपादान है, आत्मा के निमित्त से होते हैं। क्यों मेरे ख्याल से? अब प्रश्न इनका सिर्फ ये है कि अपन जो कहते हैं कि अनादि संस्कार से ये चला रहा है, तो पर्याय तो एक समय की होती है। एक उदाहरण से समझें अपन, जैसे कि अपन शाम को लौट के आते हैं और माँ पूछती कि भैया वो हमने जो तुम्हें 12 बजे डिब्बा भेजा था खाने का, वो खाया कि नहीं खाया? अरे माँ क्या बताएं, ग्राहकों का तांता लगा, समय ही नहीं मिला। अच्छा तो क्या एक ही ग्राहक में उलझे रहे क्या? नहीं, एक आया गया नहीं, दूसरा आ गया, दूसरा गया नहीं, तीसरा आ गया, ये निरंतर चलता रहा। इसलिए क्या कहेंगे अपन, ग्राहकी से फुर्सत नहीं मिली। ठीक इसी तरह कर्म अपना फल देने से पहले और नए संस्कार उत्पन्न कर चुकता है, फिर बाद में निद्रा को प्राप्त होता है। यह जो संतर वो निरंतर रहता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये संस्कार अनादि काल से चले आ रहे हैं। राग द्वेष के संस्कार वही के वही नहीं है भैया, मिथ्यात हमने आज बांधा है तो वो हमें फल कब देगा, और उस बीच में हम और कितनी स्थिति वाले मिथ्यात कर्म को बांध लेंगे, वो सब अपने अपने ड्यूरेशन पूरे होने पर और हमें फल देता चला जाएगा। इसलिए अनादिकालीन जो संस्कार है वो कथन की शैली है। वास्तव में तो सब कर्म अपना समय समय पर उदय में आकर के निर्धारित होते चले जाते हैं। ऐसे सामान्य अनंत प्रभु जिनके पांचों कल्याणक नहीं होते, समोशरण आदि की रचना नहीं होती, उनके शालीस गुण किस प्रकार घटित होंगे? भैया, ये जो अरहंतों के शालीस गुण कहे हैं तो वे तीर्थंकर की मुख्यता से कहे हैं। ये ध्यान मुख्यता वहां पर मैक्सिमम अरहंत को कितने होंगे तो तीर्थंकर की अपेक्षा से 40 होंगे। बाकी सब में अपनी अपनी स्थिति के अनुसार, जिनका जन्म कल्याणक नहीं हुआ उनको जन्म के अतिशय 10 तो होंगे ही नहीं, तो 34 अतिशय में से 10 ये कम हो गए। और केवल ज्ञान के अतिशय तो सभी को होंगे, तो केवल ज्ञान के 10 होंगे। देवकृत 14 अतिशय, समोशरण होने पर ही देवकृत 14 अतिशय होते हैं, समोशरण लगानी है इसलिए वे भी नहीं होंगे। 8 प्रातिहारी, 4 अनंत चतुष्ठ है, ये तो सबके सामान रूप से ही रहेंगे। इस तरह से अरहंतों के, मैक्सिमम अरहंतों के 40 होते हैं, बाकी सबके जरूरी नहीं है कि 40 ही रहें, कमती भी होती है। हाँ, तीर्थंकर भगवंतों का शरीर भी केवल ज्ञान प्राप्ति तक औदारिक ही है। ठीक है, तो आहार निहार होता है या नहीं होता? यदि निहारी नहीं है तो गृहस्थ अवस्था में तीर्थंकर के पुत्र पुत्री उत्पन्न होने का प्रसंग कैसे आएगा? अरे भैया, थोड़ा और समझो इसको। तीर्थंकर की तो छोड़, तीर्थंकर के माता पिता को निहार नहीं होता। तीर्थंकर जिस माँ से जन्म लेते हैं उसको अशुद्धि तक नहीं होती। अब करो क्या करोगे? हाँ, वो महापुरुष हैं, और तीर्थंकर ऐसे हमारे जैसे माँ के पेट से जाल में लिपटे हुए और मांस और खून से लिप्त नहीं आते हैं। ऐसे बिल्कुल बाहर आकर के ना उनको कोई पहुंचना धुलाना पड़ता है, ना कुछ करना पड़ता है उनके लिए, इतने पवित्र होते हैं उनकी देह। पढ़िएगा उसमें तो मालूम पड़ेगा। अब रही बात जिनके निहार नहीं होता उनके क्या संतान उत्पत्ति नहीं होगी? ऐसा नहीं है। आपका प्रश्न है कि यदि निहार नहीं होता तो गृहस्थ अवस्था में पुत्र पुत्री उत्पन्न कैसे होंगे? तीर्थंकर के भी होते हैं, और तीर्थंकर के माता पिता उनके भी निहार नहीं होता। तीर्थंकर तो जब केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते तब उनका आहार भी नहीं होता, लेकिन केवल ज्ञान से पहले गृहस्थ अवस्था में या मुनि अवस्था में उनके निहार नहीं होता। निहार के मतलब समझते? मलमूत्र की बाधा नहीं होती। निहार का मतलब मलमूत्र की बाधा नहीं होना, वो निहार कहलाता। और आहार भोजन तो करते हैं, लेकिन उनके आमाशय में जाकर के वो वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाता 100%। जैसे कि अपन लोग को साइंस के हिसाब से देखें तो अपन दूध पीते हैं तो उसका 90% स्वस्थ व्यक्ति को दूध का 90% एब्जॉर्ब होता। 100 ग्राम पिया था, 90 ग्राम एब्जॉर्ब हो जाएगा, 10 ग्राम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, वो मल और मूत्र के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। और उनके लिए वो भी नहीं होता, उनका पूरा 100% एब्जॉर्ब हो जाता है, तो निहार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। तीर्थंकर को भी, तीर्थंकर के माता पिता को भी, पर उनके बाकी सब चीजें नॉर्मल जैसे अपन के होते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, प्रश्न तो उठता है मन में, द्रव दृष्टि से आत्मा शुद्ध है। हाँ भैया, उसके स्वभाव में कभी विकृति का प्रवेश नहीं है। किस अपेक्षा से? शक्ति की अपेक्षा, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से नहीं। इतना अपन को जरूर समझना चाहिए, उसके स्वभाव में शक्ति की अपेक्षा से कभी विकृति नहीं होती। अशुद्धता तो एक एक समय की पर्याय में है, अशुद्धता के समय भी आत्मद्रव तो द्रव अपरिणामशीली है। फिर क्या पूरे आत्मद्रव को ही अशुद्ध मान लिया जाए, जबकि अशुद्ध आत्मा ने अपने त्रिकाली संकोच की स्वभाव को बिल्कुल भी मलिन नहीं किया। ऐसी स्थिति में स्वभाव दृष्टि से द्रव गुण पर्याय तीनों ही क्या शुद्ध नहीं है? ये तो आखिरी की लाइन तो आपने बहुत अच्छी लिखी। स्वभाव दृष्टि से, या जिसको अपन कहें निश्चय की दृष्टि से, हैं द्रव गुण पर्याय तीनों ही शुद्ध हैं। ये निश्चय की कठिन है, लेकिन जब हम व्यवहार की दृष्टि से देखते हैं तो जिसकी पर्याय अशुद्ध है उसके गुण भी अशुद्ध हैं, उसका द्रव भी अशुद्ध है। जिसमें से वो पर्याय निकली है वो तो शुद्ध रहा है, और पर्याय अशुद्ध निकले ऐसा नहीं होता। स्वभावात् अन्यथा भवनम विभावः, स्वभाव से अन्यथा परिणमन होना ही विभाव कहलाता है। कथन करने की शैली है भैया, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से हम जब कथन करते हैं तब दूसरे के संयोग की अपेक्षा से कथन करते हैं, तब हमें कहना पड़ेगा कि ये राग द्वेष परिणाम आत्मा के ही हैं और विकारी हैं। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये राग द्वेष परिणाम अगर आत्मा के हैं तो फिर आत्मा इनसे कभी मुक्ति नहीं हो सकता। प्रश्न उठेगा तो कहते नहीं, वास्तव में तो ये राग द्वेष परिणाम आत्मा के स्वभाव नहीं है, ये उसकी वैभाविक स्थिति है। तो दोनों चीजें हो गई, एक तरफ आप कहते हैं कि राग द्वेष परिणाम आत्मा के हैं, दूसरी तरफ कहते कि आत्मा के नहीं है। तो कहते हमारी बात समझो आप, यही तो बहुत मुश्किल है जैन दर्शन को बस इसी जगह पर समझना, और हम लोग बहुत जल्दी धारणा बना लेते हैं, निर्णय ले लेते हैं। कहते हैं कि राग द्वेष आत्मा के स्वभाव नहीं है, लेकिन वे विभाव रूप परिणमन तो है कि नहीं, इसलिए आत्मा के हैं भी और आत्मा के नहीं भी। आत्मा के नहीं है इसलिए आत्मा से उनको जुदा किया जाता है, और आत्मा के हैं तभी तो जुदा कर पाएंगे। हम अपने मान ही नहीं, पुद्गल के हैं सुरैया में, ऐसा मान ले में तो कौन होगा जो कि उसको पृथक करने का विचार करे, तो पहले मानना पड़ता है। हम बीमार हैं पहले जब मानो, लेकिन बीमार होना हमारा स्वभाव नहीं है, स्वास्थ्य हमारा स्वभाव है, तब जाके हम बीमारी से मुक्त हो पाएंगे और अपने स्वास्थ्य को प्राप्त। हमारा बीमारी स्वभाव ही है, तब स्वास्थ्य होने की कोई चिंता ही नहीं, फिर तो अब ऐसा ही है। ऐसा भी नहीं, अगर दो में से एक मानोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी। दोनों चीजों को, एक शक्ति की अपेक्षा, एक अभिव्यक्ति की अपेक्षा से, अभिव्यक्ति की अपेक्षा से तो हमारा अशुद्धि ही परिणमन हो रहा है, द्रव भी गुण भी पर्याय भी अशुद्ध हैं, और शक्ति की अपेक्षा देखें तो हम अपने उस शुद्ध स्वभाव को कभी नहीं छोड़ते। उदाहरण दिया है, पानी का स्वभाव कैसा है, शीतलता, लेकिन अग्नि के संपर्क में आकर के गर्म हो गया, तो क्या उसने अपने शीतलता के स्वभाव को छोड़ दिया क्या? कहते नहीं, कॉन्टेक्ट से अलग कर दो उसको अग्नि के, फिर देखो वो अपने नेचुरल फॉर्म में आ जाएगा, वो अपने स्वभाव में जो कहते हैं वहाँ। इसी तरह पर्याय का अशुद्धता तो ना को नाश करने की क्या विधि है भैया? ऐसा मत करो, पर्यायगत ही क्यों कह रहे आप? हमारे अंदर जो भी द्रव्य गुण पर्याय में अशुद्धता आई है उसको हम निकालने के लिए क्या करें? ऐसा पृथक पृथक मत करो, हम में से कोई हमारी पर्याय अलग हो, हम में से कोई गुण अलग हो, हम में से कोई द्रव्य अलग हो, ऐसा तो है नहीं। सब एक एक साथ इतने गड्ढमड्ड हैं कि एक दूसरे को अलग कर ही नहीं सकते आप। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा, बताइए द्रव के जो आश्रित रहते हमेशा, द्रव के बिना जो ना रहें, जैसे कि आप कहो कि काला रंग ले आओ, तो भाई किसी ना किसी फॉर्म में लाएंगे काला रंग, नहीं काला रंग लाओ, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए काले रंग की, आप तो काला रंग ले आओ, तो ऐसे कैसे? वो तो कोई ना कोई पर्याय के साथ आएगा काला रंग, और वो पर्याय भी किसकी है? किसी न किसी द्रव्य की होगी। आप एक को लाएंगे तीनों एक साथ आएंगे। आचार्य जी उदाहरण देते जैसे नट बोल्ट, नट बोल्ट डिब्बे एक दूसरे में फंसे हैं, आप एक को खींचेंगे दोनों आएंगे। ठीक इसी तरह से आप द्रव्य लेंगे तो कोई ना कोई गुण है और उसकी पर्याय, आप पर्याय लेंगे तो द्रव्य और गुण है, आप गुण लेंगे तो द्रव्य और पर्याय दोनों, तीनों एक साथ होने वाली चीजें। इसलिए ऐसा नहीं कहें कि पर्याय का अशुद्धता को, बल्कि ये कहें कि मेरे भीतर जो अशुद्धता आई है उस अशुद्धता को दूर करने के लिए। भैया अशुद्धता सबसे बड़ी किस बात की है? मोह की है। अगर देखा जाए तो सारे कर्मों का राजा मोह है, और वो अगर हमने सबसे पहले उसी को नष्ट करना पड़ता, बाकी सब तो फिर फौरन भाग जाते हैं एक के बाद एक। अगर मोह नष्ट कर लिया, सीधे मोह को नष्ट करके बारहवें गुण स्थान में पहुंचते हैं, शेष जो तीन घातीय कर्म हैं वे भी नष्ट होते हैं बारहवें गुण स्थान के अंतिम समय तक, और सीधे जाकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो मोह जो है वो सबसे ज्यादा अपने लिए विकृति करने वाला। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में तो ज्ञान ढक गया है, ज्यादा घाटा नहीं हुआ। दर्शनावरणी कर्म के उदय में मेरा दर्शन गुण ढक गया है। वीर्यांतराय के उदय से जो है, या कि अंतराय कर्म के उदय से मेरे अपने स्वभाव की प्राप्ति में थोड़ी बाधा आ रही है, विघ्न पड़ रहा है, लेकिन मोह की वजह से तो विकृति ही हो गई, पूरा का पूरा विकृत हो। जैसे कि चार लड्डू हैं है? और तीन में से अपन को थोड़ो थोड़ो मिलो है, कोई हर्जा नहीं, और एक तो पूरा मिलो लेकिन उसमें विष मिला है, बताओ है काम का? कहते नहीं भैया वे थोड़े थोड़े ठीक हैं, ये तो पूरा का पूरा पूरा मिल रहा लड्डू लेकिन विष मिला हुआ। सबसे ज्यादा दर्शन मोहनी हमारी श्रद्धा को विकृत करता है, चारित्र मोहनी हमारे चारित्र को विकृत कर देता है, पूरे जीवन को विकृत करने वाला तो यही मोहनी कर्म है। इसलिए उसकी उस विकृति को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अरहंत भगवान की भक्ति, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव और विषयों से विरक्ति, मोह के ये लक्षण हैं। अगर ये ना हो तो अनंत भगवान में भक्ति ना हो, जीवों पर करुणा का भाव ना हो और विषय के साय में आसक्ति हो, यही तो मोह का लक्षण है। कहते इससे बचने के लिए अनंत भगवान की घाट बाट से भक्ति करो और प्राणी मात्र पर करुणा भाव रखो और विषयों से आसक्त मत हो, तो मोह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दर्शन मोह तोड़ने के लिए भगवान की भक्ति, चारित्र मोह तोड़ने के लिए प्राणी मात्र से करुणा और विषयों से अनाशक्ति, इस तरह से दिया है। आज के समय में सत का मान कम होता जा रहा है, बात तो सही है। झूठा चालाक चापलूस व्यक्ति हमेशा ऊंचाई को छू रहा है, ऐसा क्यों है? ये तो स्वप्नों में लिखा है, चक्रवर्ती के स्वप्न है या कि चंद्रगुप्त के 16 हाँ चक्रवर्ती के स्वप्नों में लिखा है। अच्छा वो अब हम ये भूल जाते हैं, मैंने स्वप्न में लिखा ये तो पक्का, क्यों भाई? इसमें तो किसी चंद्रगुप्त के स्वप्न 16 ठीक, तो चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में आप सुधार लेंगे। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में वो चक्रवर्ती निकल जाता था मुंह से। चंद्रगुप्त के 16 स्वप्नों में एक स्वप्न है, उसका फल क्या लिखा है? हाथी के ऊपर बंदर उछल कूद कर रहा और हाथी चुपचाप खड़ा। जितने सम्यक दृष्टि होंगे, सच्चा जीवन जिएंगे, ईमानदार होंगे, वे चुपचाप रहेंगे, बाकी जो है उनके ऊपर बंदर जैसे उछल कूद कर रहा है। बेईमान आदमी, चालाक आदमी, वो आराम से अपना जीवन जिएगा। ये पंचम काल में ये लिखा हुआ है, अपन देख रहे हैं वर्तमान में। सूत्र राज करेंगे, कैसा लिखा, हाँ देख रहे हैं अपन। कोई कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अपने देखने में ना आ रही हो। हाँ, जिसका आचरण भ्रष्ट होगा वो राज्य करेगा, कौन पर? अच्छे आचरण वाले पर राज्य करेगा, बताओ। तो इसी तरह से इसमें अपन को क्या करना चाहिए? अपन को आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि ऐसा सोच करके कि ऐसा तो हो गई, हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना, एक चीज, और दूसरी चीज उसमें निमित्त नहीं बनना। हाँ, हम तो हमेशा सच्चाई का सम्मान ही करें, ठीक है। दुनिया अगर सच्चाई का सम्मान नहीं कर रही है, क्या करें, काल दोष है, लेकिन मैं तो हमेशा सच्चाई का ही सम्मान करूं, ऐसा हर एक कोई अपने मन में विचार रखे। स्वयं सच्चा ना बन पाऊं लेकिन सच्चाई का तो सम्मान करूंगा। स्वयं मेरा जीवन झूठा हो सकता है लेकिन झूठ को मैं सम्मानित नहीं होने दूंगा। ये चीज जो है वो अपने को महाराज सवेरे आपने प्रवचन में जो गलती होगी क्या कुछ बड़ा डर लगता है। आपने अपने प्रवचन में भगवान, गुरु और धर्म, ये तीन आलंबन अपनी आत्मोन्नति के लिए सुझाए थे, अब यह सुझाए तो थे। मेरी जिज्ञासा ये है कि क्या प्रत्येक मुनि जिसने दिगंबर मुनि मुद्रा धारण की है वो सच्चे गुरु हैं क्या? और इसकी कसौटी ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं, कसौटी है अपने पास। तो आप ते नो छिन्न दोषे न सर्वज्ञे न गवेशिना भवितव्यम नियोगे नान्यता याप्तता भवे। हमारे भगवान वो हैं जो 18 दोषों से रहते हैं, जिसमें जन्म मरण से और कर्मों से जो मुक्त हो गए, वे हमारे भगवान। विषया सावसा तीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सह प्रत्यते। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, हैं? विषय आरंभ, विषयों की आशा नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहते हैं, काय में लगे रहते, प्रपंच में, हाँ प्रपंच में नहीं लगे रहते, वो लगे रहते अपने ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सह प्रशस्त थे। मेरे लिए तो गुरु वो ही हैं। आप तो पग्मन उल्लंघ्य मत दृष्टि गुरुत्तम, नहीं आप यही है, आप तो पग्मन उल्लंघ्य, आप तो पग्मन उल्लंघ्य मत दृष्टि रोधकम तत्वोपदेश कृताश्रम शास्त्रम कापत घटनम। शास्त्र की परिभाषा यह है कि भगवान के द्वारा कहा हुआ हो, किसी प्रकार के विरोध में विरोध उसमें ना आता हो, ऐसे विशेष गुण, और जो हमेशा वीतरागता का उपदेश देता हो, तत्व का उपदेश देने वाली ही जिन वाणी है, वीतरागता का उपदेश देने वाली। तो अपने और सरल भाषा में करने हो तो छह ढाला में लिखा, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दयाजु सार, ठीक तीन लाइन। कौन है देव हमारे? जिनेंद्र भगवान। गुरु कौन है? परिग्रह से रहे, अंतरंग भी और बहिरंग भी। अकेले कपड़े उतार देने से तो बहिरंग परिग्रह छूटा है, लेकिन अंतरंग में भी छूटना चाहिए, हैं? ये कसौटी है उसकी। इसलिए क्या वे संसार घटाने वाले गुरु हैं? क्या हमें उनका आलंबन करना चाहिए? भैया पानी क्या कहते, पानी छान के, हाँ पानी पीजे छान के, गुरु पीजे जान के। जान लो कि अपना कल्याण इनके चरणों में होगा कि नहीं, नहीं तो अपन और प्रपंच में फंस जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, दिगंबर मुद्रा जहां भी दिख जाए उसका अपमान नहीं होना चाहिए, उसके सम्मान की रक्षा हमेशा करना, चाहे वो स्वयं उस दिगंबर मुद्रा का सम्मान कर पाता हो या ना कर पाता।
जिसने दिगंबर मुद्रा धारण करी है वो स्वयं उस दिगंबर महत मुद्रा का महत्व भले ही न समझता हो, लेकिन हम तो समझते हैं। उस दिगंबर मुद्रा को देख करके प्रणाम, बस इतना हमारा काम। इसके बाद अगर उनके चरणों में अपना मोक्ष मार्ग बनाना है तो फिर बाकी फिर आप अपनी परीक्षा कर लो, इससे और कोई आवश्यक वो नहीं है। अच्छी बात। चर्या का समय, चर्चा का समय 5 से 6 हो तो अच्छा रहेगा। सबकी अपनी अपनी सुविधा है भैया, हम बताएं एक दूसरे की सुविधा देखेंगे अपन, थोड़ी बहुत असुविधा झेल लो, 2-4 दिन की बात है, हम कौन परेशान, ज्यादा नहीं कर रहे हैं थोड़े भोजन भोजन ही की चिंता है और तो कुछ नहीं। तो भोजनों की डब्बा अब्बा लेता है अपनों कहीं खा लो, सब जने मिल के आराम से, उसमें क्या है, ऐसा कर लेना नहीं। हाँ वो कुछ लोगों को दिक्कत होती, कल भी वो कह रहे थे, अब क्या करें, सबके हिसाब से तो नहीं चल सकते हैं, थोड़ा एडजस्ट आपको भी करना पड़ेगा। अच्छा फिर मैं अगर 6:30 बजे से करूँ तो फिर 7 बजे मुझे, जब 7:15 बजे यहाँ से जब उतनी दूर जाना है तो पहले ही से जाना पड़ेगा। फिर आप कहोगे कि लो महाराज जी तो जो अंधेरे में चल रही थी वो देर से सामायिक में बैठी, कैसे महाराज जी हैं, तो ये दिक्कत हो जाएगी तो इसलिए ये टाइम सबके लिए सुटेबल है, थोड़ा एडजस्ट करें। क्या जमीकंद को सुखा के उनका सेवन कर सकते हैं क्या? 2 जमीकंद तो ऐसे हैं, हाँ 2 जमीकंद ऐसे हैं, हल्दी है और सौंठ है, जो कि डिहाइड्रेशन के बाद में वो बैक्टीरिया से रहित हो जाते हैं। डिहाइड्रेशन होने से, बैक्टीरिया से रहित करने की 6 विधियों में से एक डिहाइड्रेशन है। वो डिहाइड्रेशन सारे जमीकंद पे नहीं लगता, वो सिर्फ 2 पे लगता है, हल्दी और सौंठ। वे सूख जाने पर, अच्छा वे गीली अवस्था में भी एंटीबायोटिक होते हैं, उनके चारों तरफ इस तरह का सिक्रीशन होता है कि कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता, और वे जमीन में बहुत डेप्थ में नहीं जाती हैं, वे छिछली हुई ऊपर ऊपर मुश्किल से 3 इंच या 4 इंच जमीन के नीचे रहती। सूर्य प्रकाश उतनी जमीन को प्रासुक करने के लिए पर्याप्त है, इसलिए वह जमीन 3-4 इंच की प्रासुक होती रहती, उसमें जीवराशि कम होती है। हल्दी और इसके बाकी बाकी सब चीजों के बारे में नहीं है, बाकी सब नीचे जाती है, ये स्टेम रूट है, बाकी जैसे आलू है स्टेम रूट है, वो उसके तने में से निकली हुई जड़ों में बल्ब की तरह लगा रहता है आज की साइंस की भाषा में। इसलिए ये 2 चीजें अपने यहाँ पर मान्य हैं। लेकिन मूंगफली तो जमीकंद है ही नहीं, मूंगफली तो एरियल रूट है, वो तो जमीन में होता, वाई भी ये पौधा है, हवा में लगता है, फिर बाद में जो है उसकी जो जड़ें क्या है, जड़ें जमीन से ऊपर रहती उसकी। जो पौधा है मूंगफली का, कभी खेती वाले से पूछ लीजिएगा, मैंने पूछ के पता किया, तो वो पौधा का पौधा तो पूरा ऊपर रहता है और उसकी जड़ें जो है वो जमीन से ऊपर आ जाती हैं, उनमें मूंगफली लगती है, और फिर उसको क्या करते हैं वो कि ये जो चूहे वगैरह बिगाड़ ना दें, चिड़िया उसको खाना लें, तो थोड़ी सी उसके ऊपर मिट्टी ढक देते हैं, थोड़ा सा मॉइस्चर भी चाहिए उसको बढ़ने के लिए, जब वो बढ़ना शुरू होती है, उसमें दाना पड़ने लगता है, तब उसको थोड़ा सा दबा देते हैं। वास्तव में तो वो एरियल रूट है, मतलब वो जमीकंद नहीं, अंडरग्राउंड रूट नहीं है, वो वायवीय पौधा है, भूमिगत पौधा नहीं है, ये साइंस भी कह रहा है। इसलिए मूंगफली जो है जमीकंद के अंतर्गत नहीं आती है। बहुविधी फलों का निषेध है, जैसे कि अमरूद, अच्छा निषेध है, फिर हम अमरूद, तरबूज, पपीता, भिंडी, टमाटर आदि का सेवन क्यों करते हैं? बहुविधी का मायने ये है ही नहीं, अपन ने अपने मन की व्याख्या कर ली है। बहुविधी तो वो है जिसमें कि 20 तो बहुत हों और 10 कोई काम का ना हो, फेंकना पड़े। जैसे कि सीताफल, सीताफल खा लो और पहले तौल लो खाने से पहले, और फिर बाद में जितना कचरा बचा वो तौल लो, फिर पता लगेगा कि भीतर 50 ग्राम गया, बाकी सब बाहर ही है। ज्यों कर इतने सारे बीज मिटाए, इतना फल नष्ट किया, उसमें सैकड़ों बीज खराब हुए। और पपीता, पपीता में से एक किनारे पर इतने बीज हैं, एक तरफी अलग कर दिया, पूरा पपीता खाने लायक। पपीते को बहुबीजी किसी आचार्य भगवान से नहीं मिलेगा, किन्हीं ने मान लिया हो तो मान लिया, अपने घर की किताब लिख लो और उनमें लिख लो तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन आचार्यों की लिखी किताब में तो कहीं नहीं है कि पपीता बहुबीजी है। फिर तो भिंडी है, भिंडी में भी बहुबीजी, फिर तो गिलकी है, गिलकी में भी भिंडी, तो कौन सी चीज है? लौकी रोज खाते हैं, उसमें कितने बीजा हैं? लेकिन उनके बीज अलग कर देने के बाद भी दल इतनी मात्रा में है कि वह वेस्ट नहीं हुआ। अच्छा, और वे बीज कच्ची अवस्था में है, वो देने पर उनमें कोई पेड़ उगता नहीं है, इसलिए योनिभूत सचित्त के नष्ट करने का भी दोष नहीं लगता। हाँ, अगर आप और ज्यादा सैद्धांतिक रूप से पूछें तो एक होता योनिभूत सचित्त, मतलब जिसमें जीव पैदा होने की संभावना थी उसको आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमने उसको भी डिस्ट्रॉय नहीं किया, उस बीज को भी नष्ट नहीं किया है जिसमें कि जब बीज पकने पक जावे और उसमें नए पौधे को उत्पन्न करने की सामर्थ्य आ जाए, उस बीज की क्षति करो तो दोष है। लेकिन वैसे वाले अवस्था में ये नहीं होता, इसलिए भैया अमरूद है सब खाते हैं। तरबूज, तरबूज बिल्कुल अलग चीज है, तरबूज बहुबीजी में नहीं आता। तरबूज तो क्योंकि आपके रेड वाला, उसको बोलते तरबूज ना, रेड रेड कलर वाला, उसमें क्या होता है पानी वाला फल है ये, और बड़ा फल है, और बहुत जल्दी उसके भीतर थोड़ा सा भी ऑक्सीडेशन होता है। जैसे ही आप उसको बनाएंगे और वातावरण की ऑक्सीजन को ग्रहण करके जीव राशि उत्पन्न होना शुरू हो जाए, थोड़ा सा भी उसमें नमक डाल करके आप, और तरबूज को नमक डाल करके और जरा सा तो रख दो, फिर उसके बाद में माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सामने सामने देखने में आ जाएगा जीव राशि। अरे वाह, पपीता का बता ही दिया। भिंडी, भिंडी के साथ में तो एक प्रॉब्लम यह है कि भिंडी में कहाँ एकदम कोई इल्ली वगैरह पैदा हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाती, सभी में होती हो ऐसा नहीं, अवक्ष नहीं है, आप नहीं खाएं ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अवक्ष भी नहीं। उनको थोड़ा सा बोल दें कि अगर उनको अच्छा लगे नहीं तो टमाटर, टमाटर तो जो है अपने यहाँ पर अवक्ष नहीं है, आचार्य महाराज ने तो टमाटर को अवश्य नहीं माना, कोई भी आचार्य नहीं माना टमाटर के लिए। बस इतना जरूर है, कई लोग ऐसा लॉजिक देते हैं कि लाल रंग का होता है, तो लाल मिर्ची खा लेंगे वो, आलू बुखारा खा लेंगे वो लाल रंग का, हाँ लेकिन वो टमाटर नहीं खाएंगे लाल रंग का, बहुत होशियार हैं, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। उसमें बहुत सारे बीज होते हैं, वो बीज खाए जाते हैं पूरे के पूरे, उन बीजों को भी हटा दो अगर तब भी सूख दल बहुत इतना अधिक मात्रा में, इसलिए उसको बहुबीजी की कैटर में नहीं रख सकते, इसलिए ये दोनों चीज आप नहीं खाओ, ये बहुत अच्छी चीज है। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि आप खाओ, मत खाओ, जितनी कम से कम खाओ उतना अच्छा, लेकिन अभक्ष मत कहो, क्योंकि जब तक आचार्य ने उसे अभक्ष नहीं कहा, बैगन को अभक्ष कहा है, क्यों बैगन को अभक्ष कहा, देखना बैगन की जो पोजिशन है, और अनार, अनार में कितने बीज होते हैं और लाल रंग का होता है बिल्कुल, और उसका रस तो और बिल्कुल रेड होता, अब करो क्या करना रेड कमाऊंगे हैं, और बीज भी उतने सारे, लेकिन आप देखेंगे कि हर एक बीज के ऊपर एक कवच है, वो अपने आप में इंडिविजुअल फल है वो, और अनन्नास में, और ये जो क्या बोलते हैं, मैंने अभी कहा था आपसे बैगन, बैगन में एक बीज और दूसरे के बीच में कोई डिवाइजेशन लाइन नहीं है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, हाँ लेकिन इसके बीच में एक कवच होता, हर एक बीज एक अलग कवच से लिपटा हुआ, देख लो आप कभी अनार को देखना हो, वो अपने आप में इंडिविजुअल, इसलिए उसमें बहुबीजी का दोष नहीं है। लेकिन बैगन, बैगन में सब उसके उस दल के साथ में इतने बने कहते कॉम्पैक्ट, और जब गैल्वेनोमीटर लगा करके और बैगन को देखा गया तो सबसे ज्यादा शेल्स उसमें, सबसे ज्यादा जीवनी शक्ति उसमें, ये साइंस ने प्रयोग किया, इसलिए हमारे यहाँ पपाई तवक्ष में बैगन को तो रख दिया बाकी चीजों को। और बैगन के साथ ये है कि जहाँ वो उसका डंठल लगा रहता उसमें चार ऐसे लगे रहते डंठल में, एक ऊपर डंठल और उसमें चार ऐसे, और बैगन लगा रहता उसमें, तो उन चार में से किसी भी एक जगह, एक के नीचे हल्का सा छेद होगा, उसमें से चार इंद्री जीव उस छोटे से बैगन में पहले नंबर प्रवेश करता है, तब वो जाकर के परमंट करता है पूरा बैगन, उतना बड़ा होने में उसकी मदद से होता है, उस चौर इंद्री जीव की वजह से, इसलिए अपने यहां पर बैगन का निषेध किया, ये साइंस है। हाँ, और अगर सीधा सीधा और आपने बिल्कुल उसको पकने के माने उसमें आग में डाल करके कर दिया तो फिर तो बिल्कुल ही कोई उसमें रहा ही नहीं। वैसे भी अगर ऐसा नहीं कि आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वैसे बना करके भी खाएं तो उसमें आउट उसका जो बाहरी ओवर क्या कहते हैं उसको, नहीं उसका जो देखने पर कैसा मालूम पड़ता है, हाँ उसकी सब्जी जरा इमेज करें अपन, कैसी मालूम पड़ती है कटहल की सब्जी, कैसी मालूम पड़ती, कटहल अपने आप में कैसा मालूम पड़ता है, तो ये भी देखना आवश्यक होता है। अभक्ष इन सब वजहों से महाराज बताएं, देखो हमसे खाने पीने की चीजों के बारे में ज्यादा मत पूछना, नहीं तो हम ऐसी ऐसी बात बता देंगे कि या तो फिर खाया नहीं जाएगा, और खाओगे तो ज्यादा पाप लगेगा, पहले मालूम नहीं था इसलिए खाते थे, अब जानबूझ के खाओगे तो और ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए खाने पीने की चीजों में पूछोगे तो बड़ा मुश्किल है, आज के समय में। इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अपन तो अपने जीवन चलाने के लिए भैया 2-4-10 चीज़ें चुन लेवें और उन्हीं में जीवन चला लेवें। क्या फ़ायदा, जितनी ज़्यादा अपन चीज़ें चुनेंगे उतनी ज़्यादा उसमें विचार करना पड़ेगा और हिंसा भी बहुत। उसको कंफर्म नहीं करेंगे तब तक, क्योंकि संघ में भी पाइनएप्पल जूस लेते हैं लेकिन मैंने छोड़ दिया। पाइनएप्पल अनन्नास कारण वही तो नहीं बताना चाह रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया बस, क्योंकि मुझे थोड़ा सा उसमें जो कारण मालूम पड़ा है वो, पर जब तक कंफर्म नहीं होगा तब तक नहीं। आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दीजिएगा, पर मेरा अपना सोचना है। ये बताएं कि शारीरिक विकृति किसी में हो वो जिनेन्द्र देव की पूजा प्रक्षाल कर सकता कि नहीं? शारीरिक विकृति भी अलग अलग तरह की होती भैया है, तो उसमें देखना पड़ेगा कि अंग भंग ना हो और कोई ऐसा रोग ना हो, व्याधि ना हो जो दूसरे को क्या कहेंगे उसको, ट्रांसफर हो सकती हो, दूसरे को लगने वाली हो, वैसा रोग ना हो। इतना ही उसमें प्रक्षाल के लिए लिखा हुआ है, अब ये देखना पड़ेगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं जिन्होंने ये लिखा है, लिख करके दिया है, उन्हीं को देना पसंद करूंगा, है ना? मेरे ख्याल से वैसे सबका अपना अपना नज़रिया है, जो जैसे नज़रिया से जिस चीज़ को देखता है उसको वैसी ही लगती है। भैया आपके अपने 5 या 25 लोग हैं आहार देने के लिए और मेरा तो पराया कोई भी नहीं, बस इतना ही जवाब मुझे देना है। आपके अपने तो लोग 5 और 25 हैं, ठीक है ना? आप चाहते हैं कि वे ही दें, लेकिन मैं किसको पराया कहूँ? आप तो कह सकते हैं कि ये हमारे अपने और ये पराए, लेकिन मेरे लिए तो जो भी आया है उस सबके, और उसमें भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि कौन पहली बार आया है और कौन हमेशा, और किसकी उम्र निकल गई देते देते और किसने आज अपने जीवन में शुरू किया है, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता, और कौन 50 किलोमीटर से और कौन 1000 किलोमीटर से आया है और कौन जरा सा बाजू में से खिसक के आया है, इसका भी मुझे ध्यान रखना पड़ता। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सब पे दया करके और फिर लेना पड़ता है ये प्रक्रिया। एक आध दिन आप करके देख लो तो आपको मालूम पड़ जाएगा। आचार्य महाराज के सामने एक व्यक्ति ने एक दिन कह दिया था, मुझे याद है 1984 की बात है, कि महाराज किसी किसी से और किसी किसी के यहाँ तो हफ्ते भर में 2-2 बार और किसी के यहाँ पर हफ्तों आहार नहीं होते हैं, किसी से आप बहुत ले लेते हैं किसी से आप नहीं लेते हैं। तो आचार्य महाराज ने क्या जवाब दिया था, भैया उनके जैसे भाव बनाओ, तुम्हें यहाँ रोज हो और तुम्हें रोज देने मिले, मेरा आशीर्वाद है। इतना प्यारा जवाब दिया था, भैया सैकड़ों लोग देने वाले खड़े हैं लेकिन सबके परिणाम अलग हैं और वो परिणाम प्रभावित करते हैं सामने वाले को, उनकी श्रद्धा प्रभावित करती है, उसका पुण्य प्रभावित करता है, ये ध्यान रखें, इसमें कोई शक नहीं। वर्षों हो गए मैं देखता हूँ, इसलिए आपको इस प्रक्रिया में थोड़ा एडजस्ट तो करना। मैं भी एक आध बार मैंने ऐसा कर लिया तो फिर दूसरी तरह से प्रश्न आने लगा, शिमला सा की बात है, लोगों ने कहा अरे वाह महाराज जी थे उस समय, वाह बाहर वालों से ले रहे हैं, चौके वालों से तो ले ही यार, हम तो सवेरे से काम में लगेंगे। हमने कहा ठीक, कल से फिर चौके वालों से लग। 2-3 दिन चला मामला, फिर शिकायतें आने लगी, महाराज इसके चौका लगे हैं सब जगह तो आहार हो ही नहीं पास, अभी तो आप कम से कम एक ग्रास ले लेते, अब वो ही नहीं ले हमसे, हमारे 10 दिन बाद आहार हुई है, अब हम कहाँ तक खड़े रह रहे हैं। अब ले अगर बाहर वालों से ले लो तो दिक्कत है, ले लो तो दिक्कत है, गत कहूँ नहीं यार, ये तो करो उनसे मैं 4 जनों को जरूर परेशानी होगी। भैया किसी को सबको संतुष्ट तो कोई नहीं करता, भगवान भी उतर के आ जावे तो सबको संतुष्ट नहीं करता। हाँ तीसरी की घटना है 1983 की, कई लोगों ने क्या क्या बातें कहना शुरू की, हम लोगों ने तो बहुत सारी चीज़ें उस समय क्या छोड़ लग देखो तो मीठा को त्याग करे हैं और 150 रुपया किलो बना कथा रहे। अरे कहने वाले को क्या लगना, कहने में ये सब से गुजर चुके हम, इन सब चीज़ों से कोई अब बहुत सामान्य सी चीज़ें हो गई इनसे। पहले तो हमें थोड़ा लगने लगता था, तो संतरासी में हम थे, योग सागर जी महाराज, समय सागर जी महाराज, सब संगे चले जा रहे भक्ति के बाद में, और आपस में चर्चा कर रहे थे कि देखो तो अब क्या करें, कैसा करें, चलिए जितनी अपन से बनती उतनी। आचार्य जी पीछे सुन रहे थे, हम लोगों को नहीं मालूम पीछे पीछे आ रहे थे, तो हमने एकदम देखा तो आचार्य जी तो क्यों क्या बात थी, हम लोग क्या करें, सुन नहीं कर रहे। बोले सुनो, किसी के कहने पर ध्यान नहीं दो, अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो कोई कितना भी कहे उसके विचार नहीं करना, अरंतों जैसी चर्या भी करोगे तो दोष देखने वाला तो दोष देख ही ले, तुम जानबूझ के दोष मत करो, लेकिन अगर कोई अच्छी क्रिया में भी दोष निकाले तो उस क्रिया को छोड़ नहीं। कल के दिन कोई कहने लगे तो ऐसे आप बिना कपड़ा के अच्छे नहीं लगा नगोज या कुछ पहन लो, तो क्या पहन लेंगे, क्या मुख तुम्हारे छोड़ देंगे किसी के अच्छा नहीं लगने से। भैया इसलिए जो है इस प्रश्न के जवाब में मैंने इसकी बात में सोच रहा था कि एक दो बातें कहूंगा, पर इतना कह दिया ऐसे कर, प्रश्न को माइक पर ना पड़े तो ठीक है। अरे वाह, वो आहार संबंधी है और कोई विशेष नहीं है, पर ठीक है, कृपया इस संबंध में उदाहरण सहित सामान्य सावक को समझाने का, अच्छा मतलब इस प्रश्न को तो नहीं पढ़े लेकिन उत्तर दे रहे सब लोगों को प्रश्न दो, अरे वाह आप बता बड़ी मुश्किल, देखो प्रश्न तो हमारा पढ़ के नहीं सुना रहा है और उत्तर दे देना, अब बताओ कैसा करें इसमें सब समझ जाएंगे, इतने बुद्धि समझ रहे थे वो लोगों को नहीं सब समझदार रहे थे, इसलिए हम प्रश्न वो उनका व्यक्ति अच्छा रहते, पर वो प्रश्न का उत्तर चाह रहे हम उनको पहचानते हैं, हम बाद में उनको जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। धीरे धीरे ये आपकी राइटिंग से खतरा पैदा हो जाएगा, भले नाम नहीं लिखा लेकिन हम पहचान जाएंगे कि हमने लिखा होगा। पाँच लफ्जियाँ प्रश्न से मालूम पड़ जाता है कई बार, स्वाध्यायी है वैसा प्रश्न पूछेगा, अगर किसी ने अपनी पहले से धारणा बना ली है वैसा प्रश्न वहीं ना वहीं उसके पकड़ में आ जाएगा, उसको साधुओं के प्रति अच्छा भाव है, अच्छा भाव है तो वैसा प्रश्न आएगा, अच्छा भाव नहीं है तो वैसा प्रश्न, भाषा से मालूम पड़ जाता पूछने की। तो घड़ी रखो भैया, कितने बज गए, पांच लब्धियां तीन करण उत्तम सम्यक दर्शन है, उत्तम सम्यक दर्शन वेदक सम्यक दर्शन शायद सम्यक दर्शन की प्राप्ति जैसे हो। अरे वाह, इनकी कक्षा समझाने की कृपा करें भैया। सबसे पहले अपने को क्या करना, ये सब बड़ी बड़ी चीज़ें लग रही ना, अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना, ये सब प्राप्त हो जाती कैसे, सबसे पहले सच्चे देवगुरु साहब के प्रति खूब श्रद्धा रखना, जितना बने अपनी जितना से उत्तम है उतना तत्व का अभ्यास करना, और फिर संसार और शरीर और भोगों की वास्तविकता जान करके रहना तो संसार में, लेकिन उदासीन होकर रहना, तो ये सब चीज़ें बहुत आसानी से करें। रही बात शायद सम्यक दर्शन की, तो इस बार तो होएगा नहीं, कितने प्रयास करो, क्योंकि केवली को केवली का पाद मूल मिलेगा नहीं, इसलिए नहीं होगा। पर सर्वोत्तम सम्यक दर्शन, उत्तम सम्यक दर्शन, तीनों करण, ये सब सर्वोत्तम सम्यक दर्शन और उत्तम सम्यक दर्शन के पहले होते हो पांच लब्धियां भी होती हैं, इसलिए सब चीज़ें ये हो सकती है, सिर्फ शायद सम्यक दर्शन को छोड़कर बाकी सब चीज़ें हम सत्य देवग्रहचार्य की श्रद्धा, तत्व का अभ्यास और संसार से उदासीनता अगर बना ले गए तब उनको प्राप्त हो जाएगा, डरने की बात नहीं है, और खूब ज़्यादा बड़ी प्रक्रिया भी नहीं है, आज ही से शुरू कर देते हैं अपन तो कल तक हो जाएगा। हाँ ऐसा है, अंतर्मुहूर्त लगना है, अंतर्मुहूर्त का काम है, एक बार परिणामों में अगर आ गई बात वो तो ये है, समझ लो कि कब हो सकता है जिनेंद्र भगवान के 20 साल से दर्शन कर रहे हों और एक क्षण मंदिर में घुसे थे 20 साल के बाद और दर्शन किए और उसी क्षण समझ कहाँ से स्पार्क हो गया एकदम। अपन को तो सिर्फ क्या करना, अपने को तो अपनी प्रक्रिया बनाए रखना निरंतर, पता नहीं किस क्षण होगा अपन नहीं जानते, अपन तो निरंतर सच्चे देवगुरु साहब के प्रति श्रद्धा रखें, अभ्यास करते रहें, संसार में रखें पते नहीं, बस इतना हमारे हाथ में, बाकी कर्मों का क्षय से उत्तम उत्तम हमारे हाथ में कहाँ है, वो तो अंतरंग की परिणति है, वो जिस क्षण होगी इसी अभ्यास से होगी। इसलिए आदिनाथ भगवान के पिताजी का नाम नाभी राय से पड़ा, अब आपको मालूम तो है क्यों तैयार आएगा है? उन्होंने 14वें नंबर के कुल करके जब
आखिरी कुलकर होते हैं उसके पहले तो जुगल पैदा होते हैं और उनको पालना पोसना नहीं पड़ता, लेकिन आखिरी कुलकर के समय तक आकर के माता पिता अपने पुत्र पुत्री को उत्पन्न होते हुए देखते हैं, तब फिर उनके माँ के उससे जुड़े रहते हैं। अपन जब पैदा होते हैं तो नाभि से जुड़े रहते हैं, तब उसको तोड़ना पड़ता है, निकालना पड़ता है। वो जो नाभि को पृथक करने की प्रक्रिया बताई थी इसलिए नाभि राय उनके पिता का नाम रख दिया गया था। राजुल मसीह से ये नहीं मालूम हमें, ये कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रश्नों के जवाब बनने के लिए 90 नंबर में ही पास हो जाएंगे। नहीं वो मालूम नहीं हमारी सच्ची में नहीं मालूम, इसलिए हमने ऐसा टाल दिया। वो वर्तमान योग का मामला है, वर्तमान योग में हम थोड़े कच्चे हैं, प्रणाम योग में भी थोड़े कच्चे हैं। हमको आचार्य जी ने अध्यात्म शुरू से अधिक पढ़ाया, सभी को पढ़ाया, राज्य मोह से बचना बस इतना ही है, तत्व का उपदेश और बाकी तो सब यावनी का विस्तार है। हाँ तो उतना ही मोटी मोटी बात आती भैया, अब अगली बार फिर बनेंगे महाराज जी, फिर बाद में बहुत बढ़िया करवा तो ऐसी है। अन्न और फल में क्या अंतर है? अरे अन्न तो जो है जिसमें कार्बोहाइड्रेट रहता है, ऐसी भाषा में समझना क्या, अन्न की वो चीज़ें जिनमें कि कार्बोहाइड्रेट रिच रहता है। आलू में भी ज़्यादा रहता है लेकिन उतना नहीं रहता जितना कि चावल में रहता है कार्बोहाइड्रेट। इस भाषा में फ्रूट वगैरह विटामिन होते हैं और दोनों में इसका अंतर कर सकते हैं क्या? हम अन्य रात नहीं खाते फल खा लेते जबकि दोनों वनस्पति। अच्छा बात ये है, वो ये कह रहे हैं कि अन्न और फल में अंतर क्या है, जब खाना है तो सब खाओ है कि नहीं? मजे से वो ये कहना चाह रहे हैं, रात्रि में आप अन्न तो नहीं खाते। देखो अपने यहाँ पर इतनी सी बात नहीं है, अपने यहाँ पर और भी बात है। आरंभ प्रारंभ कितने ज़्यादा करना पड़ता है रोटी बनाने में, सब्जी दाल बनाने में और फल फूल एक से ऊपर खा लिया, कुल्ला कर लिया खाना। अब चूँकि रात में हम नहीं सो पाएंगे तो भैया एक गिलास धरा है पानी, इसमें कम आरंभ हुआ, 5 मिनट में हो गया काम। और अगर रोटी दाल सब्जी और सब आइटम रख कर और साथ रहता है जीव राशि का भाव, इसलिए अपने यहाँ पर उन चीज़ों का निषेध। ठीक है आपका प्रश्न, हमें प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए अब बताओ, जबकि उसमें अनेक गुण हैं। हमने आपसे पहले भी कहा था कि उसमें एक आधा ही गुण है, बाकी तो सब अवगुण ही हैं, इसलिए आप उसकी वकालत मत करो। आपको खाना है तो कोई उसमें कहो तक नहीं, पता नहीं लगन दूँ कि हम खाते लेकिन 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 आप उसको अच्छा मान के मत खाओ, वो खराब है तो खराब है, जमी गंद है वो पहले नंबर। तो जितने जमी गंद के दोष हैं वो सब उसमें, जमी गंद में कितने दोष हैं, एक फल खाने के लिए जहाँ पूरे वृक्ष को नष्ट करना पड़े वो जमी गंद, एक आलू के लिए पूरा 6 महीने जिंदा रहने वाला पेड़ नष्ट करते हैं, एक मूली एक गाजर एक एक प्याज के लिए पूरा ऊपर 6 महीने जिंदा रहने वाला पेड़ है उसको पूरा नष्ट करना पड़ता तब एक फल मिलता है। और जितने जमीन के अंदर ये होता है उसके चारों तरफ 1 स्क्वायर फीट की जो फर्टाइल सॉइल है उसमें मिलियंस ऑफ बिलियन बैक्टीरिया होते हैं और सिक्रीशन होता रहता हमेशा, तो और अधिक बड़े यूनिसेलुलर सेलुलर मल्टी सेलुलर बहुकोशीय जीव राशि उसमें पैदा हो जाती, एल्गी फंगाई वगैरह तक पैदा हो जाती, वो सब उखाड़ने में नष्ट हो जाती। और इतने ही नहीं, एक एक जमीन कण से कई कई पेड़ पैदा होते हैं, एक आलू से 10-20 पेड़ पैदा हो सकते हैं। हमने उस एक आलू को नष्ट करके आगे होने वाले 10-25 पेड़ों को नष्ट कर दिया जमीन कण के साथ ये। और जमीकंद एक्चुअली उस पेड़ का रिजर्व फूड है, वो आपके खाने के लिए नहीं था, वो रिजर्व फूड है। वो पेड़ आड़े समय में अपने लिए संचित करके भोज्य पदार्थ है वो उसका, उसने संचित करके रखा था, लेकिन आपने उस पेड़ को भी नष्ट कर दिया, उसका संचित भोज्य पदार्थ भी अपने खाने में ले लिया। ये जमीकंद के चार मोटे मोटे दोष हैं, इसलिए अपन जमीकंद नहीं खाते हैं। वही प्याज पे भी लागू होगा जो बाकी जमीकंद पे। हमारे साथ में प्राय ऐसा होता है कि हम सबका अच्छा करने की कोशिश करते हैं किंतु वही हमारे साथ दुर्व्यवहार करता, तो क्या हमें हमारे अशुभ कर्म का उदय है या हमें ये सब कुछ हमेशा सहन करना पड़ेगा या उसे उसी के तरीके से एहसास करा दिलाना होगा? तीनों तरीके देखिए, सबसे पहली चीज तीनों सही है। अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो हमें उससे कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमारे साथ भला ही करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरा हमारे साथ भला बुरा करेगा ये हमारे पुण्य पाप पे निर्भर है, हम दूसरे के साथ बुरा करेंगे वो उसके पुण्य पाप पे। हाँ हमारे संस्कार पे निर्भर है, हमारे अच्छे करने के संस्कार होंगे तो हम दूसरे के साथ हमेशा अच्छा करेंगे भले ही हमें रिटर्न में बुरा मिले। दुर्योधन से परेशान होकर के युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा था कि मैं इनके साथ हमेशा अच्छा करता हूँ और इनकी तरफ से मुझे रिटर्न हमेशा बेकार ही मिलता है,
तो युधिष्ठिर को कैसे समझाया था कि सुनो, जैसे हवाएं अगर खुशबू वाले फूलों पर से जाएं तो वे सुगंधित हो जाए, और बेई हवाएं अगर मरघट में से सड़ी हुई लाशों पर से गुजरे तो दुर्गंध लेकर के आती हैं। अब बताओ हवाओं का क्या दोष? तुम दूसरे को प्रेम देते हो, वहां से घृणा लौट के आती है, तो तुम्हारा दोष नहीं है। क्या करें, वो सड़ी गली जैसे कि लाश पर से हवा लौट के आती है, ऐसा ही तुम्हारा प्रेम वहां जाकर घृणा में बदल के आता है, तुम्हारा दोष है। कोई पूर्व में हमने वैसे कर्म किए हैं जिसका फल हमें मिल रहा है, पहली चीज तो ये। फिर हमें अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो चीज हमारे साथ रिटर्न होके आती है उसको हमें सहन करना चाहिए, भला बुरा दोनों चीजों को। और तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि उसे उसी के तरीके से एहसास कराना चाहिए कि बिल्कुल लास्ट स्थिति में है, कि फिर हम उससे विड्रॉ कर लें। हम किसी के साथ भला करते हैं और हम देखते हैं कि बार बार वहां से बुरा ही आता है, तो अब हम चुप हो जाए। उसकी तरफ से आचार्य महाराज कहते हैं कि फिर उपेक्षा नाम का संयम, न राग न द्वेष हमारा आपसे कोई तटस्थ हो जाए। तीसरी स्थिति आपने तीनों अपने आप ही लिख दी, तीनों का कॉम्बिनेशन बनाया तभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। पहली चीज, जो कुछ भी हमें यहाँ सुख दुख मिलता है उसमें हमारा वर्तमान का तो रहता ही है, हमारा पुराना भी हिसाब किताब रहता भी है इसलिए। और दूसरी चीज, हमें हमेशा सुख दुख दोनों को सहन करने की आदत डालनी चाहिए, और जहाँ से हमें दुख ज़्यादा मिले वहाँ से विड्रॉ कर लेना चाहिए कि भाई हम क्या करें, हम आगे तक आपका भला नहीं कर पाएंगे। श्रापक के लिए तो यही, मनुष्य अच्छी चीज़ों की आदतों की जगह बुरी आदतें जल्दी सीखता है, जबकि वो जानता है कि वो गलत है और उसमें ऐसा बन जाता है कि उसे छोड़ना मुश्किल होता है। जाने चे चिंतित जय जीव जरा मरण भय दुख विशेष ना विरचय अहो सुबद्धो माया घंटी हो। जब आचार्य भगवान इस बात पे स्वयं आश्चर्य करते हैं तो हम और आप तो आश्चर्य करेंगे ही। यही तो आचार्य महाराज कहते कि ये जीव जानता है कि सिवाय संसार में मैंने दुख के, जन्म मरण के और बुढ़ापे के दुख के कुछ नहीं पाया, फिर भी इसके बावजूद भी विषयों से विरक्त नहीं हो पाता, उन्हीं चीज़ों से जिनसे कि दुख पाता उनसे विरक्त नहीं हो पाता। कहते अहो आश्चर्यम इदम, इसमें बहुत आश्चर्य है। क्यों? कहते मिथ्या की ग्रंथि बड़ी सूत्र, अपने हाथ से बांधा है और अपन ही अब मजबूर हो गए। इन खोटे संस्कारों को अपने हाथ से हम बांध लेते हैं फिर हम मजबूर हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, आत्मा की अनंत शक्ति है, एक बार अगर जागृत हो जाए तो ये खोटे संस्कार भी टूट सकते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। पर है तो आश्चर्यजनक कि हम अपने लिए स्वयं दुख उत्पन्न करते हैं और फिर बच नहीं। जैसे अपन कहते हैं ना कि शराब पीने वाला पहले शराब पीता फिर बाद में तो शराब उसको पीना शुरू कर देता फिर नहीं छोड़ पाता, लग गई उसको, एक बार लग गई तो ये चीज़ ऐसे ही अपने साथ भी है। एक बार अपन ने उस मिथ्यात्व के चलते ऐसे खोटे कर्म बांध लिए कि फिर अपन मजबूर हो जाते हैं। को समय ने आत्मा ने कर्म दावेश है, लेकिन को समय ने कर्म ने आत्मा दावेश है। हाँ, वैसे तो हमेशा से कर्म आत्मा कौन चाहता है कि मैं नरक जाऊं, लेकिन जब कर्म का नरक आयु और नरक गति का उदय आता है तो जीव अनंत शक्ति वाला होकर के भी नरक चला। लेकिन जिस समय उसकी आत्मा में जागृति आती है, दृष्टि निर्मल होती है, अनंत काल के अनादि काल से पड़े हुए समस्त कर्मों को एक क्षण में नष्ट करके और अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भैया दोनों चीजें घड़ी नहीं रख रहे, मैं देखते रहूंगा। हाँ, भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान के बाद 30 साल तक उपदेश दिया या नहीं? भगवान महावीर स्वामी ने 30 साल में दीक्षा ली, 12 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त किया 42 वर्ष की उम्र, और फिर उसके बाद जो है 30 वर्ष तक 72 वर्ष की उम्र में निर्वाण हुआ। तो 30 वर्ष केवल ज्ञान के बाद उनकी दिव्य ध्वनि 30 वर्ष तक अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्टली तो कुछ वर्ष कुछ महीने कम हो जाते हैं। संसार में से जीव मोक्ष लगातार जाते रहते हैं, वही संसार खाली क्यों नहीं हो जाएगा? कृपया उदाहरण, कल भी हमने बताया था कि ये चीज़ ऐसी है जिसमें से जैसे ज्ञान है, तो ज्ञान कितना भी देते चले जाओ वो कभी एवर लास्ट कहना चाहिए उसको, कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली। ठीक इसी तरह से है, ये एक प्रक्रिया है कि अनंतानंद जीव संसार से मोक्ष चले जाएं, वहाँ भी अनंतानंद जीव रहेंगे, यहाँ पर भी फिर भी अनंतानंद रहेंगे। ये हमने कल भी जवाब, कृपया बताने की कृपा करें कि नरक गति, तिरंज गति, देवगति, मनुष्य गति शून्य है, दुखमय है, केवल मोक्ष गति ही सुखमय है। फिर ये प्राणी ऐसा कौन सा भव्य कर्म करे ताकि उसे शीघ्र से शीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो? कहते हैं कि कहते हैं कि संसारी प्राणी जब तक संसार में रहेगा तब तक उसे कर्म तो करना ही पड़ेगा, जब तक वो एक भी कर्म शेष रहेगा मोक्ष नहीं मिल सकता। इसका अर्थ तो स्वामी ये हुआ कि प्राणी पहले कर्म का करना समाप्त करे, तभी तो पुराने संचित कर्मों की निद्रा होकर के मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्या यही सत्य है? तनिक विस्तार से समझा में तो बड़ी सभा होगी, कुछ गलत लिख दिया हो तो क्षमा करें भगवान, ऐसा उन्होंने बड़े उससे लिखा है। वो जैसा समझे हैं उसको कन्फर्म करना चाह रहे हैं। देखो ऐसा है, कर्मों के काटने के लिए भी कर्म करना पड़ता है। जब तक हम कर्मों से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम अपने उस अनंत सुख को नहीं पाएंगे, ये तो आपके समझ में आ गया। लेकिन अब मुझे अगर अपने बांधे हुए संचित कर्मों को नष्ट करना है तो उसके लिए भी कुछ कर्म करना पड़ेंगे, और वही चीज कहलाती है तपस्या, उसी को कहते हैं साधना। तो सम्यक दर्शन के साथ जब हम तपस्या करते हैं तब जाकर के कर्मों का आगमन तो कम होता है और निद्रा ज्यादा होती। जैसे अपन ने किसी से संपत्ति उधार ले ली और अब अपन को चुकता करनी है तो क्या करेंगे? अपनी कमाई बढ़ाएंगे और उसमें से बचा करके उसकी चुकता भी करेंगे, तब अपना भी काम चलेगा और उसका हिसाब भी चुकता हो। ठीक इसी तरह से अपन को इस तरह से कर्म करना, कर्म ऐसे करना जिससे कि कर्म का संचय तो ना हो बल्कि जो संचित कर्म है वे भी करते चले। ये टेक्निक, ये कर्म फिलॉसफी का मेन क्लू है। क्या ऐसे कर्म करना जिससे कि हम मुक्त हो जाएं? बताइएगा। वे कर्म हमें बांधते हैं और वे कर्म हमें मुक्त कर देते हैं। उससे विपरीत, जैसे हमने एक उदाहरण दिया था कि जिस खिड़की में से पक्षी भीतर कमरे में घुस के आता है घबराता है कि मैं अब कैसे निकलूं बाहर, यहां से निकलने का वो दरवाजे नहीं है, उसे कौन समझाए कि जिस खिड़की में से आया हो दिशा बदल के उसी में से बाहर जा सकते हैं। जिस मोह के चलते संसार में घुसे थे उसी मोह को छोड़ करके संसार से बाहर भी जा सकते हैं। निर्मोही होकर कोई कर्म करे है तो संसार से पार। मैंने किया विगत में कुछ पुण्य पाप, जो आ रहा उदय में स्वयं आप भोगान बंद, तबलो जबलो न राग, चिंता नहीं उदय से बन बीतराग। बीतरागी बन करके जो कर्म उदय में आते हैं उनको समता से हम भोगें तो नए कर्म नहीं बंधेंगे बल्कि पुराने कर्म एक एक करके अपना फल दे करके नष्ट होते। ये प्रक्रिया उसकी है, आचार्य भगवंतों ने यही प्रक्रिया दी भैया, वही आपको मैंने बता दी। अरे भैया निम्न प्रश्नों का ये हम सो एक में 10 प्रश्न लिखे हैं, एनी 5 नहीं लिखा इसमें 10 क्वेश्चन लिखे, एनी इक्वल मार्क्स एवरी क्वेश्चन, ऐसा भी लिखा होता तो मजा रहता। अब क्या करें, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन के तो जवाब नहीं दे पाएंगे, इनको अपन रख लेते हैं आराम से देंगे। ये अभ्युदय निश्रेयस वाला हमने कल बता दिया था, जो सरल सरल से हैं वो पहले कर लेना चाहिए। प्रश्नों की काफ़ी जिज्ञासा है सबकी, कृपया शांत कर दीजिएगा। इसमें भी इन्होंने बहुत सारे प्रश्न, एक कागज़ पर एक प्रश्न लिखा हो तो बड़ी जल्दी हो जाता। ये भी छोड़िएगा, देना तो सबके उत्तर पड़ेंगे, आज दें चाहे कल दें। कहाँ से शुरू करें, एक दो प्रश्न के उत्तर और हो सकते हैं बस। मैं, अरे आपको कैसे मालूम पड़ा कि मैं भजन सुनाता हूँ? अब ये पहले पता करूंगा कि किसने आपसे ऐसी बात कही। अच्छा महावीर जी ने सुनकर, तब तो फिर कोई नहीं सुनाया मैं सोच रहा था बच जाऊंगा ऐसा कहने से, लेकिन वो फंस ही गए वो आप तो नहीं। आज जो है ना, अभी 2-3 मिनट बाकी हैं, एक क्वेश्चन करेंगे फिर। नो लाइन वाला सुना दे, अग्निपथ वही मुझे याद है, और तो भजन आता नहीं मुझे। ये इतने सारे क्वेश्चन जिनने लिखे हैं वे अपने क्वेश्चन कल के लिए रख दें, नहीं बहुत लोगों के हैं, 10-10 क्वेश्चन हैं, एक एक लेकिन प्रश्न तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो पूरे जो है ये टाइप करके पूरे प्रश्न लिखे, ठीक है उनको रख लें। बट हरिवंश राय बच्चन ने 9 लाइनें लिखी तो वो चलिएगा आपके मन की बात। हाँ वही कह रहे हैं, उसमें लगेंगे 5-1 मिनट। मुझे अभी यहाँ से उठ करके एक काम और करना है, वो ये है कि मुझे दुर्गापुर के वो दर्शन करके आना है, दर्शन करने जाऊँगा मैं। आप घबराए नहीं, मैं चले जाऊँ तो आप ये कि लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे, इसलिए मैंने बता दिया, नहीं तो आप भी हल्ला हो जाएगी। मैं दर्शन करके वापस आऊँगा। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंता नाम सत्य है, सिख नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। पीछे पीछे दूर तक दिख रही जो भीड़ है, पंछी शाख से उड़ा खाली पड़ा नीड़ है। सृष्टि सारी देख ले पर्याय ही अनित्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, जिनको मेरे सुख दुखों से कुछ नहीं था वास्ता, उनके ही कांधों पे मेरा कट रहा है रास्ता। आंख जब मुदी तो कोई शत्रु है न मित्र है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था, डोरियों से मैं बंधा नहीं ये मेरा संस्कार था। एक कफन पर मेरा रह गया अधिकार था, तुम उसे उतारने जा रहे ये सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके अनुराग को आज ये क्या हो गया, मैं चिता पर चढ़ा महान कैसे हो गया। सत्य देख हंस रहा कि जल रहा असत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता, आपके ही वंश से भटका हुआ हूँ देवता। आत्म तत्व छोड़ कर मैं जगत को देखता, ये अनादिकाल की भूल का ही कृत्य है। सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। आगे आगे अपनी अर्थी के मैं गाता चलूं, सिद्ध नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है।
मैत्री भाव करें।
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे।
मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे।
दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे।
दीन दुखी जीवों पर उसे करुणा स्रोत बहे।
रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं।
रहे भावना
बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं।
बने जहाँ तक इस जीवन में, औरों का उपकार करूं।
औरों का उपकार करूं।
आचार्य विद्यासागर मुनि महाराज
की जय।